نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت میں سے آج ہم ٹاپک پڑھیں گے، محسن انسانیت کے بعد. بہت ہی دلسوز ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو بہت دن سے ہم پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اس کے آخری ٹاپک پہ آ گئے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا میں ہے وہ فانی ہے. کل شعین حالکن الا وجہ، ہر چہرہ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کے. حقیقت یہ کہ دنیا میں اگر کسی کو ہمیشہ رہنے کا حق ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، اور اگر وہ نہیں رہے تو ہم میں سے بھی کوئی نہیں رہے گا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارات ملے تو وہ رو پڑی تھیں، اور ان کو اس چیز کا بہت صدمہ تھا کہ اب میرا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا. کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں آتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے تیار کردہ اصحاب نے کس طریقے سے اسلام کی باغ دوڑ سنبھالی، اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے وہ مشن ختم ہو گیا، وہ بھاگ دوڑ، وہ اسلام کی نشر و اشاعت کی کوششیں تمام ہو گئیں؟ ایسا نہیں ہے. یہاں تک تو اس کام کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں سر انجام دیا. اس کے جلد ہی بعد آپ کا وصال ہوا، یعنی جدائی، مگر آپ کی تربیت دادا، یعنی آپ سے تربیت پائی ہوئی جماعت نے اسے جاری رکھا، اور اسلامی تحریک 10-15 برس میں وسیع خطوں میں چھا گئی. حجۃ الوداع میں جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اپنی جماعت سے جس طرح خطاب فرمایا، لوگوں کو جس طرح مختلف تاکیدیں اور وصیتیں کیں، وہ سب بتا رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر الوداع کہہ رہے ہیں. دیکھیے، بہت دفعہ اشارے ملے نا حجۃ الوداع کے خطبے میں. واپسی میں غدیر خم، یہ ایک تالاب کا نام ہے، اس کے پاس پڑاؤ ڈالا، یعنی سٹاپ لیا، اور وہاں پھر ایک خطاب خاص رفقا سے کیا، یعنی کلوز سرکٹ ساتھیوں سے ایک خطاب کیا. اس میں وہی الوداعی رنگ اور زیادہ ابھر آیا. بول ایسے ہیں کہ ان کو سن کر دلوں پر رقت طاری ہو گئی ہوگی. پہلے اپنی محکم سنت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی ایک سنت تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ اے لوگو، میں بہرحال ایک انسان ہوں، شاید جلد ہی میرے پاس اللہ تعالیٰ کا بلاوا لے کر قاصد آ پہنچے اور میں لبیک کہوں. میں ذمہ داری کے دو بوجھ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ضابطۂ ہدایت اور روشنی و حکمت ہے، بس اللہ کی کتاب کو تھام لو اور اسی سے رہنمائی حاصل کرو. پھر قرآن کی طرف بہت ہی ترغیب و تشویش دلائی، پھر فرمایا، اور دوسرے میرے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں میں تمہیں اللہ ہی کی یاد دلاتا ہوں. دیکھیے کتنی پرمغز باتیں ہیں نا. ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی لمحے پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے اپنے بارے میں. ہم ہمیشہ چھوٹے بنے رہتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے سر پہ بڑے ہوتے ہیں. جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو بچے بچے ہی بنے رہتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ایسے ایسے مسئلے اٹھتے ہیں کہ واقعی اگر اللہ اور اللہ کی کتاب ساتھ نہ ہو تو بات سمجھ نہ آئے. اور آپ نے دو جملوں میں بات ختم کر دی. جب کوئی مشورہ چاہیے، گائیڈ لائن چاہیے، اللہ کی کتاب، اسی سے گائیڈ لائن. اور دوسری کہ میرے گھر کے لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ آپ کو دکھ رہا تھا فتنوں کا دروازہ کھل چکا تھا. इस खुतबे में आपने एक तो इन जलालतों का दरवाज़ा बंद किया जो अम्बिया को फ़ौकुल बशर यानी बशर से कुछ ऊपर साबित करना और गैर बशर करार देने वालों ने पैदा की और जिनकी इंतहा ये हुई कि जो हस्तियाँ अल्लाह को लम यलित वलम यूलत की शान समदियत के साथ मनवाने आई थीं, गलुफ पसंदों ने इन्हीं को उठा के अल्लाह की औलाद और खुदाई में शरीक बना डाला। नीज इनको कानून मौत से मावरा, मावरा क्या होता है, अलग पीछे बियॉन्ड, इनको कानून मौत से मावरा फ़र्ज़ करके यानी कि नबियों को मौत नहीं आती, ये मुराद है। देखिए कितना क्लियर है ना सब कुछ। इसके बावजूद आज भी कुछ लोग हैं जो नबी सल्लम के बारे में यही नज़रिया रखते हैं। इनको कानून मौत से मावरा फ़र्ज़ करके गयूबियत, क्या आपको गैब पता है, गैब या गयूबियत के तसव्वुरात तराशे और इनके लिए हयात जिस्मानी व अंसरी के दवाम के अकीदे पैदा किए। सब कुछ आज भी है कि नबी सल्लम आज भी ज़िंदा हैं, कब्र में मौजूद हैं, नऊज़ु बिल्लाह, आपको आपकी बीवियाँ पेश की जाती हैं, आप वहाँ सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना जाने कहाँ से ये नज़रियात निकलते हैं। ये गलूफ का नतीजा है सिर्फ, और कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत का लम्हा आने से कबल रुफका को आगाह कर दिया। पहली बात ही आपने ये कही कि मैं इंसान हूँ, और याद रखिए कि इंसान कमज़ोर है, खुलिकल इंसानु दईफा। आपने अपने दोस्तों को बताया कि मैं इंसान हूँ और इंसानों की तरह मौत का कानून मुझ पर भी नाफिज होगा। फिर ताकीद ये फरमाई कि किताब इलाही को असासी जाबता हयात की हैसियत से कायम रखना, इसको नोट करें, यानी अल्लाह की किताब चूमने चाटने के लिए नहीं आई, तावीज़ बनाकर गले में डालने के लिए नहीं आई, शादियों पे दुल्हनों के सर के ऊपर रखने के लिए नहीं आई, ये ज़िंदगी का बुनियादी जाबता है। इसी से रहनुमाई लेकर ज़िंदगी का निज़ाम चलाना, ये तुम लोगों के लिए बहुत बोझल जिम्मेदारी है, इसीलिए ज़िम्मेदारी का अच्छी तरह एहसास करो। इसी के साथ साथ अपने अहलो याल, अपने घर वालों और अपने इन अजीज़ी और अपने इन करीबी अजीज़ों के बारे में बग़ैर किसी वजाहत के तवज्जो दिलाई कि इनसे मुतल्लिक भी तुम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ नबी सल्लम के अहलो याल और आपकी निजी ज़िंदगी के शाहिद और आपके मामूलात को करीब से देखने वाले और आपकी तालीमात के पूरी तरह अमानतदार थे और इस लिहाज से वो उम्मत के लिए कीमती ज़रिया तालीम थे। दूसरी तरफ नबी सल्लम ने ना इनके लिए ख़जाने जमा किए, ना मीरास समेटी, ना जायदाद बनाई, बल्कि ज़िंदगी में भी इनको दरवेशाना मुआशरत से गुजारा और इनका मुस्तकबिल भी बग़ैर किसी सरो सामान के अल्लाह के हवाले कर दिया। ज़ाहिर बात है कि नबी सल्लम के बाद इनके बारे में जमात पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयत होती थी, मगर नबी सल्लम को फ़क्रे गयूर ने इजाज़त ना दी कि बात इशारे से आगे जाए। बात समझ रहे हैं, यानी अपनी ज़िंदगी भी इसी तरह की रखी और अपने असहाब को भी इसी चीज़ की तालीम दी। इस खुतबे में या इसके बाद जमात से एक बात और भी आपने फरमाई जिसके लिए एक गैर मामूली ज़रूरत दाई हुई थी। किस्सा यूं हुआ, जो हजरते सहाबा जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ यमन भेजे गए थे, किसी बात पर इनका हज़रत अली से खिंचाव हो गया। दर हकीकत बड़े बड़े काम करने के दौरान में मिजाजों के फ़र्क के साथ राय के इख्तलाफ के बहुत ही सख्त मौके आते हैं, ऐसा होता है ना, हर बंदे की एक अपनी राय, छोटी सी बात ही पूछ ले, रूम की सेटिंग कैसी करनी है, तो हर बंदा अपनी राय बताएगा, क्या पकाएं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, तो ये तो फितरी सी बात थी। कभी बहसों में तलखी भी आ जाती है और इसकी वजह से दिलों पर कुछ देर के लिए तकद्दुर, तकद्दुर क्या है, गंदगी, कदूरत, गदलापन, इसकी वजह से दिलों पर कुछ देर के लिए तकद्दुर भी रह जाता है। इंसानों से बनी हुई जमातें चाहे वो खालिस दीनी खिदमात के लिए बनी हो और चाहे इनकी क़ियादत पर अम्बिया जैसी मुंतखब रोज़ हस्तियाँ क्यों ना मौजूद हों, ये मुमकिन नहीं है कि इंसानी फितरत अपने गुनागु दाइयात तो महरकात से खाली होकर बिल्कुल सपाट बन जाए। इख्तलाफ फिर राय की निरंगियाँ यानी मुख्तिफ रंग होना और जज्बात के मद्दोजज़र यानी ऊपर नीचे होना बेहतरीन और सालेह तरीन माशरों में भी हो सकते हैं, और इसलिए बड़े बड़े काम वही आली ज़र्फ़ लोग अंजाम दे सकते हैं जो नागवारियों के बावजूद एक दूसरे से साजगारी कर सके। नागवारियाँ सहाबे कराम की जमात में कभी कभार उभरी, मगर ये इन्हीं हस्तियों के ज़र्फ़ थे कि फिर भी इनमें साजगारी कायम रही। इसको हाईलाइट करें। आपको किसी की भी बात बुरी लग सकती है, कोई बुरी बात नहीं है, नेचुरल है, लेकिन साजगारी ना छूटे। आप नाराज़ होके पीछे ना हट जाएं, या बदतमीजी करके एक दूसरे के साथ झगड़े की नौबत ना आए, या दिल में बात रख कर कुछ ना कुछ और मज़ीद उसको बढ़ा ना लिया जाए। नागवारियाँ सहाबा की जमात में कभी कभार उभरी, लेकिन साजगारी कायम रही। हम तो छोटी सी बात पे अलग हो जाते हैं। आज घरों के झगड़े देख लीजिए, शौहर बीवी के देखिए, बच्चों माँ बाप के देखिए। बच्चा कहता है अगर आप मुझे ज़्यादा फोर्स करेंगी मैं चला जाऊँगा। आप किसी की क्या बात करते हैं? और तकद्दुर आया तो आर्जी नौयत का आया, यानी अगर दिल मैले हो गए ना थोड़ी देर के लिए हुए। कुछ ऐसी ही सूरत इस मामले में भी पेश आई थी, खसूसन हज़रत बरीदा के दिल पर इख्तलाफ का असर इतना शदीद था कि उन्होंने बारगाहे रिसालत में शिकायत कर दी। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी दर्ज अव्वल की शख्सियत के बारे में शिकायत का पैदा होना, देर तक कायम रहना, परवरिश पाना, ज़ाती रंज में बदल जाना और फिर नबी सल्लम के सामने पेश भी होना ज़रा सख्त नौयत रखता था। सुनकर नबी सल्लम को दिली अजियत हुई और चेहरे का रंग बदल गया। इस पस मंज़र के साथ आपने अपने मामूल के मुताबिक किसी का नाम लिए बगैर जमात से फरमाया, जिसका मैं रफ़ीक हूँ अली भी इसका रफ़ीक है। ए अल्लाह, जो अली को दोस्त रखे तू भी इसे दोस्त रख, और जो अली से दुश्मनी रखे तो तू भी इससे दुश्मनी रख। बड़ी साफ़ बात थी कि नबी सल्लम जिस पाक तहरीक में तन मन धन लगाए बैठे थे, ऐन इसी में हज़रत अली ने भी मताए हयात की बाजी लगा रखी थी। एक ही दावत के दाई, एक ही मिशन के अलमबरदार, एक ही जहन से सोचने वाले, एक ही रुख पर चलने वाले, और फिर वो बाहमो दगर ऐसे अजीज़ सो करीबी भी कि दोनों के दरमियान पानी ना गुजर सकता हो। कैसे इस बात की गुंजाइश निकल सकती है कि दोनों में से एक से तो मोहब्बत रखी जाए और दूसरे से दिल मैला हो? ठीक वही दलील जो मशहूर पंजाबी कहावत मांदी सौकन धी दी सहेली, यानी माँ की सौकन है लेकिन बेटी की वो सहेली है, इसमें पाई जाती है। यानी मुराद के हज़रत अली और नबी सल्लम को कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें थी या मुख्तलिफ अफकार थे, वो एक ही चीज़ थे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत और हज़रत अली से नहीं है, और हज़रत अली से हो तो ये कैसे हो सकता है कि किसी और से नहीं है? तो ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रावर्शल चीज़ दिखती है। वही तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीब तरीन तरबियत याफ्ता सहाबियों के बारे में पाई जाती है। आखिर वो पूरी जमात जो अकीदा असूल और मकसद के रिश्ते या खुव्वत में पिरोई हुई थी, और फिर इसमें से वो सफ़े अव्वल जिसे नबी सल्लम ने अपने गिर्द जमा करके क़यादत के लिए तरबियत ख़ास दी जाती थी, इसमें तफरीक करके किसी के साथ मोहब्बत और किसी के साथ रंज रखने का मौका कैसे निकल सकता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत इस बात से हुई कि जिस जमात ने आपको बरसों तरबियत दी थी, अगर इसमें जज्बा या खुव्वत की असासी कदर ही इतनी कमज़ोर रहे कि इसके बेहतरीन और मुमताज़ अफराद से रंजिशें रखी जाने लगें, नीस रावियों का इख्तलाफ ज़ाती कदूरतों पर ख़त्म होने लगे और कदूरतें तूल खींचने लगे, यानी बात जो दिल में है वो लंबी ही होती जाए, तो फिर इस अजीम नस्बुलइन को लेकर आगे कैसे चला जाएगा? इसको हाईलाइट करें। याद रखिए, जिन्होंने बड़े काम करने होते हैं वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। वो कहते हैं ना कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे स्टॉप्स पे नहीं रुकते। इसी तरह याद रखें, एक जुमला लिख लें, जिन्होंने इज्तमाई काम करना होता है ना वो इनफरादी झगड़ों में नहीं पड़ते। अब ये आपके मेरे अपने हाथ में, हम अपनी ज़िंदगी को किस रंग गुजारें? सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी, मुझे ये कह दिया, मुझे नहीं पूछा, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे बड़ा नहीं समझा, मुझे छोटा कह दिया, मुझे खिलाया नहीं, मुझे पिलाया नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझसे मशवरा नहीं लिया, मैं, और इसकी वजह से आप एक बहुत बड़े मकसद से पीछे हट जाए। घर में अक्सर सासर बहू में ये झगड़े होते हैं, मुझसे पूछा नहीं, दिया क्या, लिया कहाँ, कहाँ गई, छुपा लिया, बता लिया। तो ज़िंदगी के मामलों में आप जो मर्ज़ी खेलते रहें, दीन के मामले में ये नहीं चलता। आपको फील होता है ना कि काम ठीक हो रहा है, करने दीजिए। तरबियत की हो तो लोग गलत फैसले नहीं करते, लेकिन याद रखिए कि ये जो ज़ाती चीज़ों को बुनियाद बनाकर दीन के काम से पीछे हटना, ये बहुत बड़ी ख़यानत है। 98% लोग जो दीन के काम से पीछे हटते हैं वो ज़ाती रंजिशों से पीछे हटते हैं। शैतान किसी एक के बारे में दिल में डाल देगा, मेरी इससे नहीं बनती, मैं इसके साथ नहीं चल सकती, या ये या मैं, हम में से किसी एक को चूज़ करें, मेरी इससे केमिस्ट्री नहीं मिलती, मेरी इससे फिजिक्स नहीं मिलती, बायोलॉजी नहीं मिलती। चलिए, दीन का काम पड़ा है भाड़ में और आप खेल रहे हैं अपने मिजाज के साथ। सहाबा ने ऐसा नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वक्त रखलत करीब दिखाई दे रहा था। और आपको पता है कि अंबिया कराम को तो पहले बता दिया जाता है, उनसे इजाज़त लेकर उनकी जान ली जाती है, और आप इसी कोशिश में थे कि अब सारा बारे गिरा जमात के कंधों पर रखा जाने वाला है और आइंदा जमात को नबी सल्लम की बजाय क़यादत की सफ़ के पीछे चलना होगा, जिसमें नबी सल्लम ने अपने मोतमद तरीन साथियों को शरीक करके बड़ी लंबी तरबियत दी थी और जिसके एक एक फ़र्ज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली मोहब्बत थी। इसी बिना पर आपने बड़े सख्त अंदाज में तंबीह की। लोगों ने ना जाने इसमें कैसे जानशीन की नामजदगी का फ़लसफ़ा बरामद कर लिया। सुना होगा ना आपने, यही है वो वजह जिसकी वजह से आज कई लोग कहते हैं कि नबी सल्लम के बाद खलीफा अली को बनना था और अबू बकर बन गए। खुद से ज्यूम किया और बात सिर्फ यही पीछे रख दी कि अल्लाह के नबी सल्लम ने इस मौके पे ये कहा और ये किया था, और ये सारी बातें अपने आप से ज्यूम कर करा के इस चीज़ को पीछे कर दिया और दिलों में नफ़रतों के बीज बो दिए। ज़िमनन कहते हैं साइड पॉइंट, ज़िमनन ये बात चल निकली, वरना हमारा असल मंशा ये दिखाना था कि नबी सल्लम पर हज्जतुल विदा के पूरे सफ़र में यह एहसास तारी रहा कि अब इधर का बुलावा जल्द आने वाला है। इसी तासुर के साथ आप मुख्तलिफ ताकीदें और वसीयतें फरमाते रहे। माहे सफ़र 11 हिजरी के आगाज़ से ही सफ़र आखरत के लिए मुख्सने इंसानियत की रूह पाक ने तैयारियां शुरू कर दी। एक रोज़ ओहद तशरीफ़ ले गए और शुहदाए ओहद के लिए सर बसजूद हो कर दुआ की। वापस आकर फिर ये खुतबा दिया, लोगों मैं तुमसे पहले रुख्सत होने वाला हूँ और अल्लाह के सामने तुम्हारे मुतल्लिक शहादत देने वाला हूँ। वल्लाही मैं हौज़े कौसर को यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे सल्तनतों के ख़जानों की कुंजियाँ यानी चाबियाँ अता कर दी गई हैं। तफवीज़ क्या होता है? सुपुर्द, यानी मुख्तलिफ ममालिक दावत हक़ के नतीजे में फ़तह होने वाले हैं। मुझे ये अंदेशा नहीं कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, डर ये है कि दुनियावी मुफाद की कश्मकश में ना पड़ जाओ। अल्लाह अकबर। फिर आधी रात को गोरस्तान बकी में जाकर अहले कबूर के लिए दुआए मगफरत फरमाई और फरमाया कि हम भी जल्द ही तुम से आ मिलने वाले हैं। फिर एक रोज़ बतौर ख़ास रफ़काए जमात को जमा किया और ख़िताब फरमाया कि मरहबा, ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में रखे, तुम्हारी शिकस्ता दिली दूर फरमाए, तुम्हें रिस्क दे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हें अरूज दे, तुम्हें बामनो अमान रखे। मैं तुमको अल्लाह के तकवा की वसीयत करता हूँ और तुमको अल्लाह ही की निगरानी में सौंपता हूँ। तुमको इसी से डराता हूँ क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला मुतनब्बिह करने वाला हूँ। देखो, अल्लाह की बस्तियों में इसके बंदों के दरमियान तकब्बुर और सरकशी की रविश इख्तियार न करना। अल्लाह ताला ने मुझे और तुम्हें फरमाया है, तिलकद्दार दार उल आखिरती, ये सूरह कसस की आयत 83 है, जिसका तर्जमा क्या है कि ये आखिरत का घर हम इन लोगों के लिए ख़ास करेंगे जो ज़मीन में सरकशी और फसाद मचाने की नीयत न रखते हों, और आकबत की कामयाबी तो है ही मुत्तकीन के लिए। सलाम हो तुम सब पर और इन सारे लोगों पर जो इस्लाम कबूल करके मेरी बैत में दाखिल होंगे। गोरस्तान बकी यानी कब्रिस्तान से वापसी पर ही हल्का हल्का दर्द सर शुरू हुआ। फिर सफ़र की 29वीं तारीख को एक जनाजे के साथ जाते आते हुए इसमें शिद्दत आई। मर्ज़ के इब्तदाई हल्के हमले के दौरान मैं 11 रोज़ तक मस्जिद में तशरीफ़ लाकर खुद ही नमाज में इमामत फरमाते रहे। शिद्दत मर्ज़ में घर के अंदर बिल्कुल साहिबे फराश रहने की मुद्दत एक ही हफ्ता है। तकलीफ़ बढ़ने पर अजवाज से इजाज़त लेकर हज़रत आयशा ही के हुजरे में आ गए। मरजुल मौत में भी तहरीके हक की जिम्मेदारियां पूरी तरह सामने रहीं। तबूक और मूता के मार्ग के हसूले मकसद के लिहाज से अभी तकमीले तलब थे। अगर जरा सी ढील बरती जाती तो मुखालिफ सल्तनत शेर हो जाती। इसलिए इसी हालत में बतारीख 26 यानी 26 सफर लोगों को गजवे रोम की तैयारी का हुक्म दिया। देखिए ऐसे वक्त में भी फिक्र क्या लगी हुई है कि जो अगले काम है वो शुरू हो जाए। और दूसरे दिन हज़रत उसामा बिन जैद को इस मुहिम का अफसर आला मुकर्रर फरमा दिया। फरमाया जाओ अल्लाह के नाम से अपने बाप के मुकाम शहादत तक पहुँचो। ज़रा सोचें, बाप तो पहले शहीद हो चुके थे ना, बेटे को भी कहा जा रहा है जाओ तुम भी शहीद हो। अल्लाह अकबर। और जो अल्लाह का इनकार करे इस पर हमला करो। अपने हाथों से अलम तैयार फरमा कर यानी झंडा खुद बना कर दिया। बुरैदा बिन खतीब असलमी को सौंपा। दो एक आदमियों ने हजरत उसामा की कम उम्री और कुछ ख़ानदानी मर्तबे की बिना पर चै मिगोइयाँ की, जैसे बातें शुरू होती हैं कि एक ऐसे लड़के को बड़े बड़े मुहाजरीन और अनसार पर अमीर क्यों मुकर्रर किया गया। नबी सल्लम ने सुना तो सख्त रंजीदा हुए और सख्त तकलीफ़ के बावजूद सर पर पट्टी बांध कर मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और ठीक गदीरे खम के से अंदाज में खिताब किया। क्या कहा कि मुझे इत्तला मिली है कि तुमने उसामा के मुतलिक ऐसी ऐसी बातें कही हैं। इससे पहले इसके बाप के अमीर होने पर भी तुम लोग एतराज़ उठा चुके हो, हालांकि अल्लाह की कसम वो इस मनसब का मुस्तहक था और इसके बाद इसका बेटा भी इसका अहल है। वो यानी जैद बिन हारिसा भी हमको सबसे ज़्यादा महबूब था और इसके बाद इसका बेटा उसामा बिन जैद भी हमें सबसे ज़्यादा महबूब है। इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लम ने बड़ाई के जो खुद साख्ता मेयार थे लोगों के वो ख़त्म कर दिए। इससे कबल यानी वफात से 5 यौम पहले 7 मश्क पानी डलवाया। इस गुसल से तबीयत ज़रा हल्की हुई तो सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वहाँ मकसद के साथियों से आखिरी खिताब फरमाया। तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अम्बिया और सुलहा की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तुम ऐसा ना करना, मेरी कब्र को मेरे बाद सजदागाह न बना लेना। इस गिरोह पर अल्लाह का सख्त गज़ब मुकद्दर हुआ जिसने कबूरे अम्बिया को सजदागाह बनाया। मैं तुम्हें इससे मना कर रहा हूँ। देखो मैंने बात पहुँचा दी, इलाही तो खुद इसका गवाह है। फिर नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद फरमाया, मैं तुमको अंसार के हक में ख़ास ताकीद करता हूँ। ये लोग मेरे जिस्म के पैरहन और मेरे लिए ज़्यादा राह रहे हैं। इन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी और अब तुम पर इनके हकूक बाकी हैं। दूसरे लोग फैलेंगे और ये जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। इनमें से अच्छा काम करने वालों की कदर करो और लग्जिश करने वालों से दरगुजर करो। आपको ऐसे लगता है हर बंदे की फिक्र थी। पहले अपने घर वालों की बात की, अब ये था कि शायद अंसार को लोग पीछे छोड़ दें कि अब जी अल्लाह के नबी तो चले गए, ये तो अब आपका फैसला था, मक्का छोड़ के मदीना गए, हमें क्या। नहीं, हर एक के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फिर आपने फरमाया अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया व माफीहा को कबूल कर ले और चाहे तो वो कुछ कबूल करे जो अल्लाह की बारगाह में है। तो इस बंदे ने वही कुछ इंतखाब कर लिया जो इसके लिए अल्लाह की बारगाह में है, यानी आगे जाना। यूँ तो इस ज़माने की सारी गुफ्तगुओं में अलविदाई रंग झलक रहा था, लेकिन आखिरी फिक्रे में इशारा बड़ा ही वाज़े था जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन पा गए और ज़ारो क़तार रोने लगे। कैसे पा गए अबू बकर? मिजाज शिनास थे, साथ रहने वालों को पता लग जाता है कि कौन किस दिल से बोल रहा है, क्या कह रहा है। नमाज की जमात में शिरकत से जब माजूरी हो गई, इसको नोट करें, आज सेहतमंद लोग मस्जिदों में ना जाएं और नबी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में मस्जिद और नमाज की तरफ जाएं। लेकिन देखिए फिर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आप कमज़ोरी की वजह से मस्जिद तक नहीं जा पा रहे थे, और कितनी दूर थी मस्जिद? हुजरे के साथ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी जगह इमामत पर मामूर फरमा दिया। मरस की शिद्दत बढ़ने से जमात में इज़तिराब बढ़ता गया और लोग परेशानी में बार बार मस्जिद का चक्कर लगाते। तस्कीन धानी के लिए नबी सल्लम हज़रत अली और हज़रत फजल बिन अब्बास के कंधों का सहारा लेकर पांव घसीटते हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मिंबर से निचले जीने पर बैठकर बिल्कुल आखिरी खिताब ये फरमाया कि लोगों, मुझे खबर मिली है कि तुम मेरी मौत से डरते हो। जितने भी अंबिया मबूस हो चुके हैं, क्या कोई भी इनमें से हमेशा ज़िंदा रहा? मैं अल्लाह से मिलने वाला हूँ और तुम भी अल्लाह से मिलने वाले हो। मैं वसीयत करता हूँ कि मुहाजरीन अव्वल के साथ भलाई करो, और मैं वसीयत करता हूँ कि मुहाजरीन आपस में हुस्न सलूक करें। फिर सूरत असर पढ़कर फरमाया, तमाम मामलात अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, जिस काम में ताखीर हो इसके लिए जल्दी ना मचाओ। आप कहते हैं इख्तलाफत होते भी तभी हैं, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, फिर इख्तलाफ राय हो जाता है। किसी की उजलत पसंदी की वजह से अल्लाह जल्दी नहीं करता। और मैं वसीयत करता हूँ कि अंसार के सब भलाई करो, उन्होंने तुमसे पहले मदीना को अपना वतन बनाया और ईमान को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। क्या उन्होंने फलों में तुमको शरीक ना बनाया? क्या उन्होंने तुम्हारी खातिर मकानों में वसत ना दी? क्या उन्होंने बावजूद इख्तियाज के तुमको अपने ऊपर तरजीह ना दी? देखो, अपने आप को इन पर तरजीह ना दो। सुनो कि मैं पहले जाता हूँ और तुम भी मुझसे आ मिलोगे। हौस पर मिलने का वादा है। कौन सा हौस? हौज़े कौसर। इन खुतबात को मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अवकात से मुतल्लिक किया गया, मगर एक राय यह भी पाई जाती है और शायद अमरे वाक़या यही हो कि ये सारी बातें एक ही खुतबे में कही गई हैं। सोमवार यानी मंडे, पीर के रोज़, मिजाज अकदस ने आखिरी बार संभाला लिया, मिसवाक की, पर्दा उठाकर सहाबा की जमात को देखा और मुस्कुराए, और इसके चंद ही लम्हों बाद अल्लाहुम्मा रफ़ी कलाला 3 बार फरमाया। या तो ये लफ्ज़ हैं या फिर क्या हैं, फिर रफ़ी कलाला। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के आगोश में सर रखे अल्लाह हय्युल क़य्यूम से जा मिले, आह हम सब के सब अल्लाह ही के ममलूक हैं और हमें भी पलट कर इसी के हजूर जाना है। आज वो हस्ती दुनिया से रुखसत हो रही थी जिसने इंसानियत को नई ज़िंदगी से मालामाल किया और जिसने ज़िंदगी के काफ़िले को राहज़नों के नरगे से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए खौफनाक अज़ियतें सहीं, कशमकश के संगीन मराहल पार किए, मुश्किलात के पहाड़ काटे और फिर इस कारनामे का कोई सिला वसूल नहीं किया। ये सानेहा कितना बड़ा होगा इन रफ़ीकों के लिए, उम्र भर के साथियों के लिए, जो नबी सल्लम को एक नज़र देखने से भी नई ताकत हासिल करते थे। इनकी निगाहों में ज़मीन व आसमान घूम गए होंगे, तारीख़ में जलजला आ गया होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हो पर सकता तारी हो गया, हज़रत अली बेहिसो हरकत हो गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस का दिल ऐसा शक हुआ किसी सदमे से फिर इंतकाल कर गए। यजीम सदमा यूँ भी एक कोहे गम था, यानी गमों का पहाड़ था। मुसीबत जेके नहायत ही ख़तरनाक हालात में ये पेश आया, यानी उम्मत मुस्लिमा के हालात उस वक़्त इस बात का तकाजा करते थे कि अल्लाह के नबी रहें। ये भी नोट कीजिए, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, लोग चले जाएंगे, हम कहते हैं सारे काम करके जाओ, अभी ये भी नहीं, अभी वो भी नहीं। नहीं, इतना जिसको आपके क्रिटिकल टाइम था उम्मत मुस्लिमा पे, ये रूमियों की तरफ जो लश्कर उसामा भेजा गया, ये कोई छोटी बात नहीं थी। आप कह लें कि तबूक के मौके से भी ज़्यादा सेंसिटिव इशू था। कैसे? कि जबकि एक तरफ रूमी हुकूमत की तरफ से जंग का ख़तरा मौजूद था, इसीलिए जैश उसामा, जैश किसको कहते हैं, लश्कर को, और इसीलिए जैश उसामा रवाना हो रहा था। दूसरी तरफ फितना इर्तदाद, कौन, जो लोग मर्तद हो गए, और तीसरा और मानेईने ज़कात की शोरश थी। मानेईने ज़कात, जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, शोरश मीन शोर, तीसरी तरफ तहरीक इस्लामी इर्द गिर्द की सल्तनतों को दावत देने के साथ साथ हल्का सा चैलेंज भी दे चुकी थी, और दाखली यानी ये तो बाहर के हालात थे ना, वो इतना नहीं नुकसान देते जो अंदर के लोगों का दबना और कमज़ोरियाँ और टूटना होता है। कैसे? और दाखली मुश्किल ये थी कि निफाक की दबी हुई रोह के उभर आने का अंदेशा था। दिलों में निफाक होता है ना, जब लीडर होते हैं दबा रहता है, दिल खट्टे होते हैं फिर भी लीडर्स के सामने लोग चुप होते हैं। आप देखिए, जब तक सास होती है ना तो दुरानियाँ जेठानियाँ बावजूद इख्तलाफ राय के घर में रह लेती हैं। एक बड़ा बंदा घर से उठकर जाए, एक साल में सब भाई अलग हो जाते हैं। बड़े जो होते हैं ना, ये गूंद होते हैं अक्सर, होना भी चाहिए अगर उनके अंदर हिकमत है, लेकिन अक्सर एक बड़े के जाने से घर कई हिस्सों में बट जाता है। लेकिन अगर तज़किया और तरबियत हुई हो तो फिर ऐसा नहीं होता, और भी बल्कि लोग करीब आ जाते हैं। कि पहले तो सर पे कोई था अच्छे बुरे पे टोकने वाला, अब सब मिलके रहो ताकि दूसरों को जग हंसाई का मौका ना दो। मगर नबी सल्लम की तरबियत का कमाल था कि आपकी तरबियत पाई हुई जमात ने अपने जज्बात पर फौरन काबू पा लिया, और नाउम्मीदी और इंतशार का शिकार होने से बचकर अपनी अहम जिम्मेदारियों की अंजामदेही की फ़िक्र की। मुख्सन इंसानियत जैसी हस्तियों की वफात पर रंजो गम करने से ज़्यादा अजीम जिम्मेदारी जानशीनों पर यह होती है कि वो इस तहरीक और निज़ाम के तहफ्फुज़ और इस्तेहकाम की फ़िक्र करें, जिसका शिराज़ा ऐसे ही लम्हों पर गफलत और कोताही करने से बिखर भी सकता है। वो हस्ती जो बरसों पूरे काम की रूहे रवां बनी रहती है और तमाम साथियों के काबिल एतमाद और गहरी मोहब्बतों का मरकज़ होती है, इसके उठ जाने से बड़ा भारी खला अचानक पैदा हो जाता है, जिसे अगर बरवक्त ठीक से ना भर लिया जाए तो बड़े खौफनाक नतायज पेश आ सकते हैं। नबी सल्लम की तैयार करदा जमात ने अपने एहसासे ज़िम्मेदारी और अपनी मजबूती किरदार का बेमिसाल सबूत इस वाक़े से पेश किया कि फौरन इस खला को भर लिया और नज़्म के बंधन ढीले ना पड़ने दिए। जानशीनी के लिए कोई कशमकश नहीं हुई, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि अब नबी सल्लम के बाद हम उनके जानशीन बनते हैं। तलवार नहीं चली, शोर हंगामा नहीं हुआ। सकीफ़ा बनी साइदा में जमात के अरबाब हलो अक़द, ये कौन होते हैं जो बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, मामलात को सेट करते हैं, इनके दरमियान एक मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद जिसने इतना भी तूल नहीं खींचा और जिसमें इख्तलाफी रंग इतनी देर भी कायम नहीं रहा जितना कि आज मामूली मामूली नौयत के अंजुमनों के उहदों के लिए होता है। जी यानी इतने आराम से ये सारा मामला हो गया। इस्लाम की शुराई, शुराई क्या होती है? मशवरा, शुरा। शुराई जमहूरियत के तहत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतहाब अमल में आया, जिसकी तौसीक, तौसीक यानी जिसको पक्का कर लिया। मस्जिद नबी के इज्तमाए आम में पूरी जमात के अवामी इज्तमा ने बशरह सदर कर दी, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा चूज़ करने में किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अजीम दावती नस्बुलैन को फैलाने और नबी सल्लम की आगाज़ करदा मुहिम्मात को तकमील तक पहुँचाने में जिस अज़्म बसीरत और हुस्ने किरदार के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़री ज़री किसको कहते हैं, गोल्डन खिदमात अंजाम दी, यानी बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दी, और जिस शान से हज़रत फारूक, उस्मान, अली और सफ़े क़्यादत के दूसरे बड़े सहाबा ने अपना भरपूर तआवुन नबी सल्लम के जानशीन अमीर जमात को बहम पहुँचाया, इसकी मिसालें इंसानियत के पास कम ही होंगी। मुहसिन इंसानियत के तैयार करदा इंसान ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन नमूना इंसानियत है, वो बेलौस किरदार रखता है, वो जहानत व बसीरत में अपना नमूना आप है और सख्त तरीन हालात में अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल होने वाला नहीं है। चुनाचे तारीख गवाह है कि नबी सल्लम की तरबियत दी हुई इस जमात और इसकी क़्यादत ने चंद ही बरस में इस्लामी तहरीक की शुआएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी, और इस्लामी निज़ाम अदल का साया रहमत जिस रफ्तार से नबी सल्लम ने खित्ते अरजी पर फैलाया था, इसमें कतन कोई फ़र्क नहीं आने दिया। अब ये सब कुछ हमें क्या सिखाता है? अपनी मौत के लिए तैयार रहें। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। हम में से भी हर एक अपनी मर्जी के वक्त पे नहीं जाएगा दुनिया से, जो चाहे वो कर ले, जब चाहे कर ले, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। अल्लाह सुबहाना ताला बंदे से काम लेता है, कभी हमारा काम सिर्फ काम शुरू करना होता है, कभी हमारा काम काम को आगे लेकर चलना होता है, कभी हम बीच में आते हैं, कभी आखिर में आते हैं। असल काम ये है कि आपका मेरा काम क्या रहे, कि अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे अंदाज में नई तरतीब दीजिए, यानी आज से अपनी ज़िंदगी को नई तरतीब दीजिए। आज तक जो हुआ सो हो गया, अब आगे एक नया इंसान, एक नया तरीक़ेकार आपके अंदर छल के, क्योंकि आप देखिए कि हम सब के बस एक ही मौका है। अब क्या मैं और आप इसको छोड़कर दुनिया से निकल जाएं? नाकाम थे तो अपना काम ही रहे, क्यों? अभी ज़िंदा है, कर सकते हैं कोशिश। अल्लाह ने एक बार फिर अपने प्यारे नबी की सीरत पढ़ने का मौका दिया है, क्या हम अपने लिए इसमें से अमल की बातें नहीं लेंगे? और याद रखिए, जिस कौम के पास इतना कामयाब और इतना बेहतरीन लीडर हो, वो कौम आज दुनिया में रुल रही हो, थके खा रही हो, ऐसे लगता है हमारा तो कोई बड़ा ही नहीं है, ऐसे लगता है हमें तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है, ऐसे लगता है हमारा तो कोई उस्ताद ही नहीं है, ऐसे लगता है हमारा तो कोई मनहज ही नहीं है। आज तो हम इस तरह फिर रहे हैं दुनिया में भेड़ बकरियां बनकर। पहले तो चलें कोई गुनाह कोई गलत चीज़ होती थी, लोग उसका एहसास करते थे, अब तो एहसास ही ख़त्म हो गया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से ले जाने में अल्लाह की ये बहुत बड़ी हिकमत थी। अगर आप अपनी आंखों से आज उम्मत का हाल देखते तो कहाँ आप नज़र बिन हारिस को बुरा कहते, या कहाँ आपको उस दौर के बुरे बुरे लोग जिन्होंने हर मुमकिन तरीके से इस्लाम के पैगाम को पीछे करने की कोशिश की, आज उससे कई गुना बढ़ के मामला ख़राब है। और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी जुरत की बात है। कल किसी ने मुझे कुछ नेट से चीज़ें दिखाई, यकीन करें मुझे लगता है मैं उसके असर से फिर बीमार हो गई हूँ। मैं ठीक थी, पूरी रात इस तरह से मुझे नींद नहीं आई। सुना होता है, लेकिन जब चीज़ बंदा आंखों से देखता है तो फिर दिल पे बोझ जाता है। और मैं सोचती थी और जिना किसको कहते हैं, और कैसे खजा का गैरत का जनाजा निकलेगा, और अपने मुसलमान मुल्क, मुसलमान लोग, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के, गैरों को तो छोड़ दें, इन मुल्कों में बैठे हैं हम, कहते हैं ठीक है ये तो जो मर्जी करें, इनको तो इजाज़त है, इन पे क्या कुड़ना? इधर कुड़ने के लिए एक ही बात काफ़ी है कि लोग अल्लाह को ही नहीं मानते। आप अपने मुल्कों का बिगाड़ देखें इस वक्त, बेहयाई और खूबसूरती के नाम पर, फैशन के नाम पर, और जो खुशियों को हमने अपने कह लीजिए कि हया की मौत बना ली है ना, हैरत गुम हो जाती है कि वो माँ बाप जिंदा है जिनकी बेटियाँ ये हरकतें करती हैं, और वो माँ बाप जिंदा है जिनके बेटों से ये काम होते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि इस नबी का जो दर्द था वो हमारे अंदर उतर आए। नबी ने जिस तरह तरबियत की, हम भी वैसे तरबियत करें, और असहाबे नबी ने जो तरबियत ली हम भी वही लें। फितनों के आगे बंद बांधना लाजमी होता है। देखिए, शीशे की दीवारें नहीं चलती, कांच की दीवारें नहीं लगती, बड़े बड़े लोहे के डैम बनते हैं, फिर कहीं पानी को रोका जाता है। आपके आने वाले दौर में, आपकी नस्लों के बड़े होने के दौर में वो फितने आ रहे हैं कि अगर ये आपने कुरान सुन्नत कुचलियों से ना पकड़ा तो हम भी बह जाएंगे, और आधे को तो बह गए हुए हैं। क्या कुछ तो हमने भी कबूल ही कर लिया है, कितनी बड़ी बड़ी इस्लाम के असूलों से ज़र्बे तकसीमें खाती हुई चीज़ें तो हमने भी एक्सेप्ट की हुई हैं। क्या करें, होता है फिर ये तो होगा, फिर हम रोएं, फिर चीखें, फिर तड़पें, फिर डिप्रेशन, फिर परेशानियाँ, तो ये हमारे नसीब की बात है। हम सब जानने वालों की ज़िंदगी में अगर ये हालात हैं तो जिनके पास कुछ नहीं उनका क्या पूछना। आज हम सब हकीकत में इस चीज़ का दर्द महसूस करें, हम कितना दर्द रखते हैं, दूसरों को तो पीछे कर दीजिए। 3 घंटे की फिल्म देखकर तो क्या कोई दर्द लेकर उठेगा दीन का? ये तो हमें अपने आप से पूछना है कि हर क्लास क्या बस एक आदत तो नहीं बन गई, बैठ के सुन रही हूँ और सुन रही हूँ बस ख़त्म, ले लिए ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं, नहीं लिया चले देते हैं, चलें कुछ तो हो जाए। गोल क्या है हमारे, क्या करनी है तदखीर सोसाइटी की? जब तक अपने ज़िंदगी में दर्द और तड़प नहीं पैदा करेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक कोई कहने वाला होगा आप उसके कहने पे काम करेंगे, कहने वाला कोई नहीं होगा आप भी घर में 500 दाने की तस्बीह लेकर बैठ जाएंगे कि मैं कहाँ बाहर निकलूँ, मेरे लिए घर में इबादत काफ़ी है। सिर्फ सुनना नहीं है मकसद, आप कह रहे हैं सुन रहे हैं ना, यहाँ नहीं सुन रहे, घर सुन लेंगे, इधर से नहीं सुनेंगे किसी और का सुनेंगे, सारी उम्र सुनते रहिए, काम नहीं करेंगे तो सुनना फ़ायदा नहीं देगा। सारी उम्र डॉक्टर ही बनते रहें तो मरीज़ों को कब देखेंगे आप? हमारे इर्द गिर्द इतना बिगाड़ है, इतनी बिगाड़ की हद है, और हमारे इर्द गिर्द से हमारा इलाका भी और हमारा कल्चर, हमारी ज़ुबान, हम सिर्फ अपने उर्दू बोलने वाले कल्चर के गम और दुख और उनके जुर्म और उनकी बेकार जिंदगियों को लिखने लग जाएं तो सफ़ों के सफ़े काले हो जाएं। लेकिन हम मुतमईन हैं, हो ही रहा ना, कर ही रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, दिल से उठती नहीं है बात, ऐसे लगता है दिल से उठती ही नहीं है बात, अब मुतमईन बैठे हैं, ऐसे लगता है कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनों को आग में जलता देखने का, दफनाएंगे जाके मुर्दों को कल। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना रहम करते हैं।